नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन है, युग संधि महापुरुष चरण और संकट निवारण। ये अगस्त 1980 में अखंड ज्योति पत्रिका में आया था। इसमें गुरुदेव ने मतलब उस समय के जो मुश्किल हालात थे और उनसे कैसे उबरा जाए, इसके लिए एक बहुत बड़े आध्यात्मिक अनुष्ठान की बात की थी। आइए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने वो जो 1980 का दशक था उसे कैसा बताया, मतलब क्या संकट देख रहे थे वो?
उन्होंने उस समय को एक बहुत ही नाजुक एक संकट का दौर बताया था, और सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, जैसे महामारी या युद्ध के बादल या प्रदूषण, उन्होंने एक आप कह सकते हैं एक गहरे पैटर्न की तरफ इशारा किया था। भविष्य में और भी मुश्किल हालात की चेतावनी दी, जैसे प्रकृति का गुस्सा, आंधी तूफान, बाढ़, मौसम का अजीब बर्ताव, गर्मी में सर्दी जैसी बातें, हाँ, और नई नई बीमारियां, समाज का टूटना, मतलब अविश्वास, अपराधों का बढ़ना, चोरी, मारकाट और मानवीय मूल्यों का गिरना भी, राग, द्वेष, अहंकार, हवा, पानी, जमीन सबके बिगड़ने की बात कही थी। गंगा जल देख के प्रदूषित होने का जिक्र था, और वो परमाणु हथियारों का खतरा तो था ही।
बापरे, तो ये सब तो बाहरी लक्षण थे।
बिल्कुल।
गुरुदेव के हिसाब से इन सब का मतलब मूल कारण क्या था?
बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये संकट सिर्फ भौतिक नहीं है, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है, असली जड़ है सूक्ष्म जगत के वातावरण का दूषित हो जाना। हमारे चारों ओर का जो अदृश्य, एक तरह से कहें तो मानसिक और भावनात्मक माहौल है ना, वो इतना बिगड़ गया था कि उसमें नकारात्मकता घुल गई थी, और वही हमारी सोच हमारे व्यवहार पर बुरा असर डाल रही थी। व्यक्ति और समाज दोनों बीमार पड़ रहे थे।
अच्छा, तो ये जो अदृश्य प्रदूषण था, इसी को उन्होंने युग संधि से जोड़ा था, है ना?
जी हाँ, बिल्कुल। युग संधि यानी दो युगों के मिलने का समय, एक संक्रमण काल। ये हमेशा ही उथल पुथल का समय होता है। पुरानी चीजें, पुरानी व्यवस्थाएं टूटती हैं, खत्म होती हैं, और साथ ही एक नए, एक बेहतर युग की तैयारी भी शुरू होती है, नींव रखी जाती है। तो ये जो संकट थे वो उसी टूट फूट और नए सृजन की पीड़ा का हिस्सा थे, ऐसा उनका मानना था।
तो इतना गहरा संकट और इतना बिगड़ा हुआ माहौल, इसके लिए फिर समाधान क्या बताया पूज्य गुरुदेव ने?
उन्होंने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर सामूहिक आध्यात्मिक अनुष्ठान का आह्वान किया, नाम दिया युग संधि महापुरुष चरण। ये 23 जून 1980 यानी गायत्री जयंती से शुरू हुआ और पूरे 20 साल तक चलना था, सन 2000 तक।
20 साल, इतना लंबा, और इसका स्केल क्या था? मुझे याद आ रहा है कि आंकड़े बहुत बड़े थे।
हाँ, लक्ष्य बहुत बड़ा रखा गया था। इसमें 1,00,000 नैष्ठिक साधक चाहिए थे। नैष्ठिक मतलब जो पूरी तरह समर्पित हों, निष्ठावान हों, और साथ में 10,00,000 अनुयायी साधक। इन सबको मिलकर रोज 24 करोड़ गायत्री मंत्र का जप करना था।
24 करोड़ रोज? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है।
जी, उद्देश्य यही था कि इतनी बड़ी सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा हो जिससे सूक्ष्म जगत का यानी उस अदृश्य वातावरण का शोधन हो सके, स्थूल वातावरण भी अनुकूल बने, आने वाली मुसीबतें टलें या कम हों, और एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद मिले।
लेकिन गुरुदेव को ऐसा क्यों लगा कि इतने बड़े स्केल पर ही ये काम हो सकता है? मतलब अकेले अकेले साधना करना काफी नहीं था क्या?
यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने समझाई। उनका कहना था कि जब संकट इतना बड़ा हो और सामूहिक हो, सबके ऊपर असर डाल रहा हो, तो उसका समाधान भी सामूहिक ही होना चाहिए, उसी स्तर का होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रयास का जो असर होता है ना, वो अकेले व्यक्ति की साधना से कई कई गुना ज्यादा होता है।
अच्छा।
और अपनी बात को बल देने के लिए उन्होंने इतिहास और पुराणों से कई उदाहरण भी दिए।
हाँ, कौन से उदाहरण दिए थे उन्होंने?
जैसे भगीरथ का तप, हालांकि वो एक व्यक्ति का संकल्प था, पर उससे गंगा उतरी और लाभ पूरी धरती को हुआ। या फिर दधीची ऋषि का अस्थि दान,
उससे देवताओं को शक्ति मिली।
भगवान बुद्ध ने भी भिक्षुओं की सामूहिक साधना से बिगड़े हुए माहौल को ठीक करने की कोशिश की थी। और एक बहुत जरूरी उदाहरण राम जी का, रावण वध के बाद गुरु वशिष्ठ ने उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञ करने को कहा। गुरुदेव कहते थे कि असल में उन्हीं यज्ञों से वातावरण शुद्ध हुआ और राम राज्य की स्थापना हो पाई। महाभारत के बाद भी ऐसा ही हुआ, यज्ञ और उपासना से माहौल सुधारा गया।
समझ रही हूँ।
हाँ, विश्वामित्र का प्रयास, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, समर्थ रामदास और शिवाजी, चाणक्य और चंद्रगुप्त, गांधी जी का आंदोलन भी तो एक तरह की सामूहिक चेतना ही थी। देवताओं की शक्ति से दुर्गा का प्रकट होना, राम का सेतु बंधन, कृष्ण का गोवर्धन उठाना, ये सब दिखाते हैं कि मिलकर कितनी बड़ी शक्ति पैदा होती है।
सही बात है। तो मतलब ये महापुरुष शरण सिर्फ विनाश को रोकने के लिए नहीं था, इसका कुछ और भी उद्देश्य था।
बिल्कुल, ये सिर्फ नेगेटिव को हटाना नहीं था, इसका लक्ष्य दोहरा था। एक तरफ तो विनाशकारी ताकतों को रोकना था, ध्वंस को रोकना, और दूसरी तरफ सकारात्मक शक्तियों को, अच्छी चीजों को बल देना था, सृजन को गति देना। गुरुदेव ने इसे एक बड़ा मौका बताया, कहा कि जो इसमें भाग लेंगे उन्हें अपना कल्याण तो होगा ही, लोक कल्याण का पुण्य भी मिलेगा।
तो एक तरह से उन्होंने जो अध्यात्म से जुड़े लोग थे उन्हें जगाया, उन्हें सक्रिय होने को कहा।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई जैसे मुश्किल समय में डॉक्टर आगे आते हैं, सैनिक आते हैं, समाज सेवी आते हैं, वैसे ही ये समय अध्यात्मवादियों के लिए चुप बैठने का नहीं है, ये उनका युग धर्म निभाने का समय है, यानी समय की जो पुकार है उसके अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करने का। उन्होंने सबको पूरी निष्ठा से, हिम्मत से इस अभियान में जुड़ने को कहा और ये विश्वास भी दिलाया कि ये कोशिश सफल होगी, माहौल जरूर बदलेगा और आने वाली पीढ़ियों पर इसका अच्छा असर पड़ेगा।
तो इस पूरी चर्चा का, इस उद्बोधन का सार क्या माने हम, निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार जब कोई विशेष संकट का समय आए, जैसे युग संधि, जब वातावरण स्थूल और सूक्ष्म दोनों बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, तब बहुत बड़े पैमाने पर पूरी निष्ठा से किया गया सामूहिक आध्यात्मिक प्रयास, जैसे यह गायत्री महापुरुष चरण था, वो उस बिगड़े माहौल को शुद्ध करने और सकारात्मक बदलाव लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी तरीका हो सकता है। ये सिर्फ अपने मोक्ष या अपनी साधना की बात नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, विश्व कल्याण का एक अवसर है।
ये वाकई गहरा विचार है।
और ये पूरी बात आज के समय के लिए भी एक सवाल खड़ा करती है, नहीं? आज जब हम फिर से सामाजिक और पर्यावरण की बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तब इस तरह की सामूहिक सकारात्मक चेतना, या कह लें कि पॉजिटिव एनर्जी, उसको जगाने के, उसको सही दिशा देने के क्या तरीके हो सकते हैं आज के जमाने में, ये सोचने वाली बात है।